ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
கன்யாதானமே அங்கே பூதான, பூ ஜமீன் பூமி தான கரனா ஹே. கன்யாதான கரனே பூமி தான கரனா ஹே. அபி தேகா ஹே ஜோ கன்யாதான கரதே விதிமே, तो अपने किसी जमीन, एक जमीन को जमीन देंगे, वहां से मिट्टी ला कर रखेंगे, उन जमीन उनको दे दिया. कन्या का विवाह कहीं दूसरे स्थान में, उसके पिता के जमीन में एक जमीन उसका नाम पर रहेगा. ये लोगों का सब करके उपजाऊ करके जितना होगा उसको लेकर पहुंचा देंगे, उसका ही जमीन होगा कन्यादान. गोदान भी उसका अंग है, कन्यादान का अंग गोदान. गोदान से गो को लाकर रखो, नहीं तो गो का गोबर लाकर उसमें रखो, संकल्प करके दान करते ही. उसे कन्यादान करते समय गोदान भी करना होता है, भूदान गोदान और स्वर्ण दान, स्वर्ण भी देना होता है. उसके साथ अन्य जो देते हैं और बाकी तो बहुत ही आडंबरे में तो बहुत खर्च करते हैं, किन्तु ये सब को मालूम नहीं शायद. कन्यादान की अंग तो ये हो गया, एक कन्यादान के अंतर्गत जो दान हो गया वो दान अलग है, किन्तु बहिर्विधि इसे कर्म करते समय कोई कर्म करते उसमें भी दान करना पड़ता है, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, किंतु उसके अतिरिक्त जो दान है उसको दत्तम कहते हैं. इष्ट पुरत दत्त ऐसे तत्पर होकर के जो करते गृहस्थ वो पितृलोक को जाते हैं. केवल कर्म करने पर पितृलोक को जाएंगे, शीघ्र वापस आएंगे. स्वर्गलोक को जाने के तो कर्मणा पितृलोक, विद्या देवलोक, उपासना से देवलोक की प्राप्ति. कर्म भी करे उसके साथ उपासना करे तो देवलोक की प्राप्ति, उपासना नहीं करके केवल कर्म करें तो पितृलोक की प्राप्ति. तो इतने कर्म करने से, इष्टापूर्त दत्तीय कर्म करने से, ये कर्म करने वाले तो बहुत ही जानते भी नहीं कर्म क्या, इष्ट क्या है, पूर्त क्या है, दत्त क्या है. कर्म करना बहुत लोग कहते हैं, गृहस्थ लोग हम कर्म योगी है. क्या कर्म करते हैं? धन कमाया, मकान बड़ा बड़ा बना दिया, चार पांच पुत्र सबके लिए अलग अलग बना दिया, सबके लिए अलग व्यवसाय करा दिया, सबकी शादी करा दी, एक कर्म कर लिया. हम गृहस्थ का कर्म, गृहस्थ का कर्म, बच्चा पैदा करो, उनको पढ़ा कर तैयार कर दो, विवाह करा दो, ये कर्मयोगी. ये कर्म करके कर्मयोगी नहीं है. जो कर्मयोग ज्ञान योग का साधना, गीता में भगवान ने कहा कर्मयोग ज्ञान योग दो योग, लोके सुधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मान होगा. ज्ञान योग ने संख्यानम, कर्मयोग ने योगिनाम. ये ज्ञान योग का साधन जो कर्मयोग है, ये कर्मयोग ने बड़े बड़े मकान बना कर लड़के को नाम दे दिया, संपत्ति करके उनको दे दिया और उनको शादी करा दिया, ये कर्मयोग नहीं कहीं शास्त्र में आया. ये तो सामान्य कर्तव्य, ये तो करना है. बिल्ली भी बच्चा पालती है, बंदर भी बच्चा पालती है, ये बच्चा पालना कर्मयोग नहीं. कर्म तो ये ही इष्ट पुरत दत्त कर्म करे, निष्काम होकर करे, अथवा स्वर्ग प्राप्ति के लिए करे, कोई बात नहीं. ये कर्म करे, इष्ट पुरत दत्त कर्म करने से कर्म ही होता है, तो पितृलोक को जाएंगे. और उसमें कैसे जाते हैं उसके दक्षिणान मार्ग बताते हैं. उपासत में तो तत्पर होकर निरंतर करते हैं, तो धूमम अभिसंभवती, धूम को जो उत्तरायण मार्ग में संस्कार करने के बाद ज्वाला प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ये ज्वाला अर्चिम, ये धूम को प्राप्त करते, धूम अभिमानी देवता. धूम अभिमानी देवता से रात्रि को, रात्रि अभिमानी देवता को, रात्रि अभिमानी देवता से कृष्ण पक्ष अभिमानी, अपर पक्षम, अपर पक्ष कृष्ण पक्ष है अपर. इसलिए कृष्ण पक्ष में आश्विन मास में पितरों के लिए कर्म करते हैं, अपर पक्ष में कर्म होता है पितरों के लिए. अपर पक्षात यान षड उदंग इति, सूर्य जाते हैं छह महीना दक्षिण में, उदंग दक्षिण में जाते, दक्षिण अभिमानी देवता छह महीना. तान एते संवत्सरम, नैते संवत्सरम अभी सप्राप्नुवन्ति. उत्तरायण मार्ग में उत्तरायण अभिमानी देवता से संवत्सर अभिमानी देवता को जाते हैं, किंतु दक्षिणायन में जाने वाले दक्षिणायन अभिमानी देवता से संवत्सर को प्राप्त नहीं करते हैं. उत्तरायण में संवत्सर अभिमानी देवता है, दक्षिणायन में संवत्सर अभिमानी देवता नहीं है. वो भी राजा ने पूछा था, जानते हो दोनों की व्यावर्तना कहाँ से अलग होते हैं? ये पहले से अग्नि अलग हो गया, एक तो धूम अभिमानी को, एक अर्च अभिमानी, ये अलग हो गया. फिर उत्तरायण दक्षिणा होकर के उत्तरायण जाने वाले संवत्सर अभिमान देवता को प्राप्त करते हैं, किंतु दक्षिणायन में जो जाएंगे दक्षिणायन के बाद संवत्सर को प्राप्त नहीं करते, नैते संवत्सरम अभिप्राप्नुमति, संवत्सर को प्राप्त नहीं करते हैं, ये अलग हो गया। फिर दक्षिणायन अभिमान देवता से कहां जाएंगे, मासेभ्य पितृलोकम, पितृलोकाद आकाशम, आकाशा चंद्रमसम, एष सोमो राजाय देवानाम अन्नम तं देवा भक्षयन्ति। मास से दक्षिणायन अभिमान से मास से पितृलोक को जाते हैं, और पितृलोकाद आकाशम, आकाश अंतरिक्ष में, आकाशा चंद्रमसम, चंद्र को जाते हैं, चंद्रमा। चंद्र कौन है, एस जो दिखता है, ऐसा दृश्यते अंतरिक्ष में आकाश में दिखता है, यही चंद्र, एस सोम राजा, इसको सोम भी कहते हैं, ये ब्राह्मण का राजा कहते हैं, वो चंद्र में जाते हैं। तो देवानाम अन्नम, वो जो यजमान पितृलोक को जाता है, चंद्रलोक गया, वो देवताओं का अन्न हो जाता है, और ते देवा भक्षयंती, और देवता तम देवा भक्षयंती, देवता लोग उसको खाते हैं। फिर यहां क्या है, ऐसे तो फिर जाना तो व्यर्थ हुआ, इतने कर्म कर जाएंगे चंद्रमलोक में, और देवता लोग उसको खा लेंगे। कहते यहाँ के भक्षयंती जो आया श्रुति में, इसके ऊपर विचार है, भाष्य में भी आया, ये खाने का अर्थ नहीं है, ये भोग भोग्य होते है, अन्न का देवानाम अन्नम, देवताओं का भोग्य हो जाता है, देवताओं का भोग्य होने से देवता लोग उनके साथ खेल आदि करते भोग्य हो जाते हैं, और देवता लोग उसको भोग करते हैं, अर्थात उनके जो गया देवता के अधीन रहते हैं, किन देवता के अधीन होने पर भी देवता के साथ खेलते क्रीड़ा करते तो ही आनंद उसको प्राप्त होता है। कोई सामान्य आपस में खेलते हैं, कोई राजा के साथ खेलता है, किस खेल, राजा भी कभी खेलेंगे, कुछ खेलते हैं तो किसको बुलाएंगे, किसके साथ तो खेलेंगे, तो राजा के साथ जो खेलता है घूमने जाता है वो विशेष हो जाता है, तो देवताओं का भोग्य हो जाता है, ये भक्षण दिखा तो खाने का अर्थ नहीं है। तस्मिन् याव संपात मुषित्वा थे तमेवाध्वान पुनः निवर्तन्ते यथेतम आकाशम, आकाशाद वायुम, वायुर्भूत्वा धूम भवति, धूम भूत्वा अभ्रम भवति। तस्मिन् याव संपात मुषित्वा, पितृलोक को जो जाते हैं वो फिर कर्म क्षय होता है, शीघ्र वापस आ जाते हैं। विद्या से जो जाते देवलोकों को स्वर्ग ब्रह्मलोक तक दीर्घ काल रहते हैं। यहां कितने रहेंगे, याव संपातम उसीता, याव संपातम कर्म जितने हैं कर्म क्षय होने तक, संपतंत्य ये नित संपात, जिसके द्वारा नीचे गिरते उसको कर संपात, नीचे गिरे के किसके द्वारा, कर्म क्षय हो गया तो नीचे आ जाएंगे, वहां जाने के बाद कर्म समाप्त हो जाएगा तो एक क्षण कोई नहीं रखेगा, जब कर्म है तब तो रहेंगे, कर्म समाप्त हो जाएगा जाना पड़ेगा। स्वर्ग में भी पितृलोक भी स्वर्ग के अंतर्गत है, पितर को जो जाते हैं, और पितृलोक के अंतर्गत यमालय भी है, वहां भी कोई कोई यदि पाप कर्म का फल यमालय में भोग करते हैं वे प्रेत होकर रहते हैं, पितृलोक को जाके स्वर्ग में भोग करते हैं, वहां जो श्राद्धा आदि करने पर पितरों को प्राप्त होता है, उनकी सदगति होती है, बच्चे श्राद्ध पिंड दान करते हैं, तो वहां जो पितृलोक में जाते हैं जब तक समय है तब तक कर्म है रहेंगे, कर्म समाप्त होने के बाद संपातम उसी तो वहां वास करके फिर आते हैं। अथ एतमेव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते, जिस मार्ग से ऊपर गए थे फिर उसी मार्ग को फिर वापस आते हैं, यथेतम यथागतम, जैसे गए थे ऐसे वापस आते हैं, और समाप्त हो गया कर्म क्षण होने के बाद एक क्षण भी वहां नहीं रह सकते हैं, स्थिति का निमित्त कर्म, जैसे दीप जलाते हैं घृत तैल आदि लगा देते हैं, तेल घी है तो तब तक दीप जलता है, और जब तेल घी समाप्त हो गया बुझ गया, इसी प्रकार कर्म से गए थे वहां समाप्त हो गया तो एक क्षण समाप्त नहीं रह सकते, फिर आना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद भी कभी कभी देखते हैं स्वयं जाकर पहुंचे किन्तु अपने नौकर पहले से पहुंचा हुआ है, और उसके पूछते तू कैसे आ गया, हमने भी सेवा की, हमने भी बहुत क्या, आपने हमसे सब कराया तो इतना हमने किया, हम भी दर्शन किए, हम भी उपासना की, मैं भी जप ध्यान करता था, तो पहुंच गया मैं, अच्छा कितने दिन रहोगे, ये देखा कि ये मालिक जितने दिन साल रहेगा उसे 9 करोड़, उसमें कुछ से अधिक 10,000 साल आएगा, कैसे लगेगा? ये पहले आ गया, अधिक रहेगा और हमको जाना पड़ेगा शीघ्र। वहां पहले की यहाँ के छोटा बड़ा वहां नहीं चलेगा, वहां वो हो गया बड़ा, ये मालिक बन गया छोटा, और बहुत दिन रहेगा स्वर्ग में, ये शीघ्र वापस आ जाएगा। कैसे कष्ट लगेगा, अपने से कोई पहले चला गया और अपना से निकृष्ट सेवा करता था, और अभी वो बन गया वहां ऊपर स्थान में बड़े बैठा है। कोई भी हो, सामान्य कोई भी है, गरीबी भिकमगा, ऐसे कोई भगवान का भजन करता है, कहीं स्वर्गलोक पहुंच जाता है विद्या से, देवलोक उपासना करके, और कोई यहां स्वर्ग जाएगा और देखा थोड़े कम में गया, बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, और जिसकी उपासना बहुत अधिक है तो अधिक समय रहेगा। इसे वहां भी ये कष्ट होता है, मालूम होता है कि 3 दिन के बाद हमको जाना है, चल जाना है, और फिर जाएंगे तो फिर कहाँ जाना, ये समय देखें बड़े कष्ट होता है। यहाँ तो कुछ विचार नहीं कर पाता है, किन्तु वहां जाने के बाद उसको सब मालूम हो जाता है कितने दिन के बाद हमको जाना है, और फिर वापस आना पड़ेगा जहां गया। पुनः निवर्तन थे यथितम, आकाश होगा था, आकाश से वायु हो जाते, वायुर्भूत्व वायु होकर के, वायु तो नहीं होता, वायु के साथ एक रूप होकर के धूम भवती, धूम अभिमानी देवता साथ मिल जाता है, धूम होकर के फिर अभ्र बादल मेघ हो जाता है। ये ऊपर से जब आया मेघ के साथ मिल करके वृष्टि के साथ पानी के साथ नीचे आता है, अभ्रम भूत्वा मेघो भवती, मेघ भूत्वा प्रवर्षति, तयः व्रीहि अवायु औषधि वनस्पतयस्ति लमासा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम् निष्प्रपतरम् यो यो ह्यन्नमति यो रेत सिंचति तद हुयो एव भवति। अभ्र होकर के वो मेघ, पहले मेघ के वृष्टि होने के सामर्थ्य जल कण होने के लिए मेघ कहा था, उसके पहले पूर्वावस्था अभ्र, कभी सफेद भी दिखेगा, उसके बाद कालापन आ गया मेघ हुआ वर्षा होने के लिए, मेघ होकर के वृष्टि होती, वृष्टि होने के पहले मेघ, उसके पहले अभ्र है आकाश में, सफेद भी दिखते है इधर उधर है, किन्तु वो जब वायु चलने के बाद मिल करके थोड़ा वर्षा होने का समय तो कालापन हो गया, दिखा भी वर्षा होने वाली, मेघ भूत प्रवर्षति वर्षा होते, जब वर्षा होते समय वो जो आता है पितृलोक से जीव, उसके साथ मिल करके नीचे पानी में आकर आ जाता है, उस समय जब आता है उसको कष्ट नहीं होता है, शरीर आरंभ होने पर कष्ट होगा, अभी शरीर नहीं है, पितृलोक से वापस आ रहा है, सूक्ष्म रूप से है, ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र सूक्ष्म शरीर भी उसमें साथ मिलकर रहता है, सूक्ष्म शरीर रहने पर भी स्थूल शरीर में जब जन्म लेगा तब सुख दुख भोग होगा, इसमें भोग तो नहीं किन्तु आता है उसके साथ, जड़ जैसे पड़ रहा उसमें पानी में नीचे आ गया, आकर के मिट्टी में जब वर्षा के साथ आ गया, तो यह ब्रीही अवा औषधि वनस्पति तिलमाशा इति जायन्ते, ब्रीही धान यब छोटे छोटे पौधे पेड़ पौधे होते हैं, तिल उरद मासे उरद ऐसे सब जो घास तृणमत हो ऐसा उत्पन्न होते मिट्टी में होकर के घास पास हो गया, और अतो भी खलु दुर्निष्प्रपतरम, ये जो पानी में आ करके यहाँ कोई घास बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई जब बन गया, कोई बिरी बन गया, ऐसे होने के बाद घास बन गया मिट्टी में गिर गया, उसी मिट्टी पानी से के साथ जाता था, किस घास में चला गया, किस धान में चला गया, गेहूं में चला गया, यव में चला गया, रह गया, इतने होने के बाद तुरंत फिर उसको जन्म होगा इतना ही, यहां से निकलना बहुत कष्ट होता है, घास बनिया घास खा लिया घोड़ा, घोड़ा जाकर घास खा लिया, कहीं टटी करे कहीं गिरा, वहां भी कभी कोई पतला घास निकला उसको कोई खा लिया वहां का गया, कोई फल बनिया फल में चला गया, चिड़िया खाकर चला गया उसमें जाकर उसके पेट में चिड़िया जाकर टटी कर लिया कहीं गिरा, ऐसे हो करके अच्छा धान हो जाए ब्रीही अब हो जाए तो भी इतने मात्र से जन्म नहीं होता है, जो धान जो पैदा हुआ घास हुआ वो अलग है, अलग कर्म फल है, अभी जो ऊपर से आया उस स्वयं धान बन गया, स्वयं जव बन गया, पेड़ बन गया, ऐसा नहीं, वो वृक्ष घास वो भी जीव है, वो भी कर्म फल है, वो कर्म फल से उनको जो बना वो अलग है, ये ऊपर से आकर पानी के साथ आकर उसे धान पेड़ में चला गया, गेहूं में चला गया, घास में चला गया, पेड़ में चला गया, पत्ता हो गया, बकरी खाकर चला गया, वो लेकर उसको खा लिया कहीं गिरा गया, यही से उसे होकर के गिरता है, कोई खाता है, कोई जमीन में फिराता है, ऐसे रहते रहते धान हो जाने के बाद ही गेहूं भाव हो गया, उसको खाएगा कोई पुरुष, खाएगा पुरुष शरीर में जाएगा, वो अन्नर सक्रम से वीर्य होकर के फिर स्त्री के देह में जाने पर गर्भ होगा। किंतु यदि कोई ऐसे खाया, साधु कोई उर्ध्व रहता है, बच्चा कोई खा लिया, जो पुरुष नपुंसक बूढ़े खा लिया, वो भी ऐसे ही रहकर शरीर समाप्त हो गया, आगे बच्चा नहीं हुआ, फिर मर गया, उसके अंदर फिर समाने चला गया, फिर मिट्टी में मिल गया, फिर वो कहीं जाकर किसी पेड़ पौधे में आया, कोई खाने के बाद तुरंत गर्भ में जाएगा ऐसा नहीं। इसी प्रकार करते करते कभी किसी पुरुष के शरीर में गया जो अपने स्त्री के साथ संबंध करने है, फिर उसके बाद ऋतु के समय में, किस समय में जानता है ऋतु है तो गर्भ होता है, केवल पुरुष संबंध होने मात्र से गर्भ नहीं होता है, वो नहीं होते इसे नष्ट हो गया, फिर कभी इस समय में जाकर के गर्भ होता है, गर्भ होने के बाद जन्म होगा, जब गर्भ में प्राण संचार हुआ अभी जन्म उसको यहां से शुरू होगा। इसके पहले पितृलोक से आते समय ऊपर से तो आ जाएगा, मिट्टी में जब गिरा यहां से निकलना दुर्निष्पतरम, वहां से निकलना बड़ा कठिन है, उसे आकर के कोई रेत सेचन करने वाले पुरुष देह के संबंध बड़ा कठिन है, बीच में कोई खाया घास पशु बन गया, पशु पक्षी खा लिए, फिर कोई मनुष्य खाने पर भी इसे बचा खाया कुछ नहीं, शरीर से निकल गया ऐसे रह गया, ऐसे बूढ़े कोई खाया कुछ नहीं हुआ, ऐसे होकर के बहुत अंतराल में नष्ट हो जाता है। कभी इसको कहते काकतालीय न्याय, कभी किस प्रकार कोई काकतालीय न्याय, ताल के पेड़ है, कौवा जाकर बैठा तो ताल गिर गया, दो प्रकार काकतालीय, कौवा ऊपर बैठ गया ताल गिर गया, सो कहे काक बैठने से ताल गिरा, काक बैठने से नहीं, वो तो गिरने का समय था, अथवा नीचे कौवा बैठा ऊपर से ताल गिर गया मर गया, तो काक बैठने से ताल गिरना कुछ नहीं, अकस्मात जो हो गया काकतालीय न्याय कहते हैं, उसका कोई नहीं था, अकस्मात ऐसे हो गया। तो ऐसे भी प्रकार जो मनुष्य जन्म मिलता है वो भी काकतालीय न्याय है, अनेक पुण्य पाप कर्म है, सब फल देने के लिए कितने अनादिकाल से संचित कर्म है, कभी कोई कर्म फल देगा, कभी कोई कर्म फल देगा, पुण्य कर्म पाप कर्म सबका बहुत है, कुछ कर्म लेकर खाए जिसका नाम प्रारब्ध, जिस कर्म का फल इस जन्म में भोगना है, किन्तु संचित कर्म बहुत ही, बहुत कर्म है तो सब क्यों नहीं कर लाया, जो कर्म पूर्व जन्म समाप्त होते समय जो कर्म फल देने के तैयार हो गए थे उनमें से कुछ कुछ कर्म को छांट करके इधर लाया, वो भी अपनी इच्छा से नहीं है कि हम इस कर्म को लेकर इसको भोग लेंगे, अपने जो कर्म फल तैयार वो अपने आप ही आ जाएगा, जैसे आजकल कंप्यूटर में करते हैं ना, अपनी इच्छा से नहीं, जो जो तैयारी होगी सामने आ जाएगा, इसी प्रकार जो कर्म फल देने की तैयारी हो गए वो कर्म भी कोई परस्पर विरुद्ध कर्म है, एक जन्म नहीं दे सकते, कोई कर्म आ गया पेड़ बनना पड़ेगा, एक को कर्म आया स्वर्ग जाना पड़ेगा, एक को कर्म आया मनुष्य बनने के लिए, कैसे तीन कर्म एक साथ कैसे होगा, उसमें जो प्रबल कर्म उसको निकालेंगे वो कर्म फल देगा, पहले ये कर्म समाप्त होगा तो आगे फिर विचार किया जाए आगे क्या कर्म, कौन कर्म फल देने की तैयारी होगा इसके अनुसार लेकर के आया, तो लेकर के आया तो जन्म लेगा, और कर्म तो बहुत है, और यहां से जाने के बाद फिर कौन कर्म फल देगा, कहां जाना पड़ेगा वो भी ठीक नहीं है, तो ये जो कर्म लेकर के आया जन्म लेता है कर्म समय में, कर्म से गायकर स्वर्गलोक का नीचे आया, बीच में कर्म फल भोग नहीं होता है, शरीर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ही बहुत ऐसे हजार हजार साल कहीं पड़ा रहा, ऐसे पड़ा तो कष्ट उसमें नहीं होता, उस समय ऐसे ही रह गया, फिर कभी किसी प्रकार काकतालीय न्याय से जैसे मनुष्य जन्म कभी बन जाता है, कोई निश्चय कर सकते नहीं कहा मनुष्य जन्म कब मिलेगा, बहुत पुण्य कर्म है, पुण्य पाप समान होता है, फल देने के लिए जो तैयार हो गए, और संचित कर्म तो बहुत है, उनमें से जो कर्म फल देने के तैयार हो गए, कोई विशेष पुण्य नहीं स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, विशेष पाप कर्म नरक देने के तैयार नहीं हुआ, अंतराल अवस्थाएं कुछ पुण्य पाप समान हो गए तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा, वो कभी मिल गया, फिर कभी पुण्य कर्म स्वर्ग चल जाएगा, कभी नरक जाएगा, कभी पेड़ बन जाएगा, कभी पशु बन जाएगा, इसी प्रकार ये भी काकतालीय न्याय से ऊपर से आ गया मिट्टी में गिरा, घास हो गया कोई खा लिया कहां चला गया, कोई कहां गिरा भाई मनुष्य खाए तो भी कुछ चला गया, जितने सब गेहूं धान आदि के साथ रहेगा खाने के बाद वो रेत होकर के गर्भ में जाएगा, बचा होगा कोई जरूर नहीं, बीच में सब नष्ट हो जाता है, कभी कभी कोई खाया कहां गया, किसान कभी उस जाकर के अन्न रस के द्वारा रक्त आदि के द्वारा रेत में वीर्य में रहेगा, फिर ऋतु काल में स्त्री गर्भ में आकर गर्भ होगा, तब वो आगे जन्म लेगा, फिर उसको कर्म फल भोगना पड़ेगा। यो यो ही अन्नमती यो रेत सिंचती तद भूय एव भवती, जो जैसा अन्न खाता है अन्न रस बनकर रेत होता है, रेत सिंचन करता है पत्नी में, फिर भूय आगे जन्म ग्रहण करता है। जैसे जिस पुरुष पिता माता है उसी प्रकार उसकी आकृति के अनुसार आगे जन्म होता है। कहीं कहीं से कहा मरने के पहले आगे एक पैर हटा रख कर गई इसको छोड़ता है, ऐसे कीड़े वो के होते हैं वही चलते इस प्रकार, ऐसे कीड़े चलेंगे ऐसे ऐसे पकड़ लिया फिर छोड़ेंगे, फिर उधर जाना है पहले उसको ऐसा रखेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर उधर जाना ऐसे रखेंगे फिर छोड़ देंगे, आगे थोड़ा लग गया फिर पीछे होकर इधर चल जाएंगे, ऐसे कीड़े जाते कुछ कीड़े होते हैं, पता पता है एक पता इधर है यहाँ है कीड़ा, उस पता पर जाने के लिए थोड़ा इसे लगा, इसे जब लग गया यहाँ छोड़ दिया फिर वहां पहुंच गया। ऐसे कहते हैं आगे जन्म प्राप्त करने के बाद इसको छोड़ेगा शरीर, इसे शास्त्र में आया, उसका ये अभिप्राय नहीं आगे गर्भ में जाने के बाद ये छोड़ेगा। जो मरने का समय हो जाता है उसके आगे जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए वो कर्म से आगे जो जन्म बनेगा उसको स्वप्न में जैसे दिखता है इसे दिख जाएगा कि आगे मुझे कहाँ जाना है वो दिखता है, उस समय लगता है कि मैं अभी वहां गया। इसलिए कोई कोई लोग मरते समय कहते हैं वो भय करता है और आगे मुझे डर लगता है वो आगे क्या यमदूत तो आगे दिखता है, अथवा कोई कोई कहता है आगे जन्म कहाँ मिलेगा उसको थोड़ा ऐसे लग जाता है, वहां अभिमान हो जाता है ये सब मेरा ये अभिमान छोड़ देता है, वो अभिमान हो जाता है अभी गया नहीं यहाँ है यहाँ रह गया, लोग तो चार पास घेर घेर पूछते देखो तुम्हारे बच्चा आया देखो मुझे पहचानते हो कोई कुछ कहता है सब चार तरफ घेर करके, अब उसको कष्ट बहुत हो रहा है, पहले तो पश्चाताप करता है किम हम पापम अकरवम किम हम पुण्यम ना करवम, सोता है मैं क्यों पुण्य कर्म नहीं किया क्यों इतने पाप कर्म किया जीवन क्यों व्यर्थ कर दिया, उस समय चिंता सोता है, अब सोता है तो उस समय कुछ करने का उपाय नहीं दिखता है पाप कर्म का फल आगे भोगना है, और सारा जीवन में क्या पुण्य कर्म नहीं किया मुझे आगे कैसे दुर्गति मिलती है ये दिखता है दुखी होता है। उधर लोह पास लेकर यमदूत आ गई, लोह पास न काले न स्नेह पास न बंध भी अभी तो कृष्यमान तम द्रक्षसि आत्मानम तदा, कहते एक धर तो लोह पास लेकर के काल आकर के बांधता है खींचता है, इधर स्नेह पास से बंधुओं को खींचते बंधुओं को स्नेह से, कोई रोता है कोई कुछ कहता है कोई कहता है देखो तुम्हारा दादा बच्चा आया तुम्हारा पोता आया, ये तो मरकर मरने वाले कष्ट हो कर रहे उस समय पोता आया पोता कहेंगे तो खुश होकर देखेंगे, जब तक थोड़ा इधर है तब तो देखते हैं, बाद में जब उधर का उनको दिख जाता है कष्ट होता है आगे पोता पोता पुत्र किसको नहीं देखते हैं, सब कहेंगे अब देखता नहीं सुनता है कभी सुनना ही भी नहीं पड़ता है, दोनों तरफ खींचा जाता है, इधर स्नेह पास है न बंधु भी और लोह पास है न काले न काल यमदूत आकर के लोह पास ला करके खींच दे आओ तुमने क्या क्या कर्म किया उसका फल हम देंगे आओ, उत्कट रूप उग्र रूप दे करके उसको खींच दे देखते ही डर जाएंगे, और स्नेह पास ने बंध दोनों तरफ खींचा जाएगा, इधर पश्चाताप करता है कि हम पाप म कर्म क्यों पुण्य कर्म नहीं किया उस समय कुछ करने का नहीं, और भगवान का नाम ले लो जो पहले अभ्यास नहीं किया उसे भगवान का नाम क्या पश्चात इतने कष्ट होता आगे दिखता है मुझे क्या कहाँ जाना, यमदूत तो जहां लेंगे वो दिखता था यमालय कैसे कष्ट देते है मुझे वहां लेने वाले वो दिखता है, अब भगवान का नाम कहाँ याद आएगा, जो जीवन भर अभ्यास किया हो तो अंत उसी समय कुछ नहीं होता है, ऐसे अभी भी कोई किसको बहुत कष्ट हो जाता है थोड़े तो कष्ट होता भगवान का नाम लेगा, इतने कष्ट होता है तो सब भूल जाता है तो उस समय तो बहुत कष्ट होता है, तो ऐसे रहता है पश्चाताप करता है, फिर कभी आगे जन्म लेगा तो आगे जन्म जो मिलेगा उसी में अभिमान हो जाता है दिख जाता है फिर शरीर छोड़ता है, ये नहीं कि आगे जाकर किसको छोड़ेगा ये अर्थ नहीं, अभी गया नहीं यहाँ है किंतु सपने जैसे उसको दिख जाता है, सपने में जैसे दिखता है ऐसे आगे उसको दिख जाता है कहाँ कहाँ जाना कहाँ जाना क्या जाना, उसके बाद मरता है कष्ट हो जाता है, उसके बाद किस जन्म को जाएगा ये कहते हैं तद्य यह रमणीय चरणा अभ्यास हो ये रमणीया योनिमा पद्धिरन ब्राह्मण योनिमा क्षत्र योनिमा वैश्य योनिमा अथ यह कपूय चरणा अभ्यास हो ये कपूयांग योनिमा पद्यरण स्व योनिवा शुकर योनिवा चंडाल योनिवा। जो यहाँ रमणीय चरण रमण आचरण करने वाले शास्त्र विहित कर्म करने वाले पुण्य कर्म करने वाले शास्त्र विहित कर्म जो रमणीय शोभन आचरण करने वाले अभ्यास हो हयते रमणीयांग योनि में आपदेरन शीघ्र ही रमणीय पुण्य योनि को प्राप्त करेंगे। पुण्य आचरण जब कोई क्रूर बहुत है मिथ्या भाषण करता है कपट है तो उससे पता चलता है आगे इसकी दुर्गति होगी अथवा आया नीचे नीचे। जो सरल है क्रौर्य नहीं मिथ्या नहीं सरल है उससे समझते है ये उसका पुण्य कर्म है। लोक में स्वभाव देकर के लगता है इसका पहले पुण्य कर्म किया था अभी पुण्य कर्म लेकर आया अथवा आगे सद्गति को प्राप्त करेगा। जो बहुत क्रूर है झूठ ही बोलता है कपटाचरण करता है वो आगे दुर्गति को प्राप्त करेगा। वो देखने से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है जो शास्त्र को जानने वाला जान लेते इसकी दुर्गति आगे होने वाली है। इसलिए क्रूर क्रौर्य क्रोध क्रौर्यता मिथ्या कपटाचरण ये कुछ अच्छा नहीं है। आचार सदाचार होना अच्छा है। आचार हीनम न पुनन्ति वेरा यद्यप्यधिता सहसठ भिरंगी छंदाश्येन मृत्यु काले त्यजंती नीडम शकुंता इव जात पक्षा।